हे परमपिता परमात्मा, मैं स्वाध्याय को सदा अपने साथ रखूं और जीवन में सदा आगे बढ़ता रहूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ओम तत्सत, परमात्मा ने नमः। ओम शांति 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 ही। हम तैतरीय उपनिषद में पहला जो भाग है शिक्षावली, उस पर हम बात कर रहे हैं। अब तक हमने नो अनुवाक जो है दस अध्याय हमने किए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे हमको सीखना चाहिए, सीखने का तरीका क्या है। नवे अनुवाक में जो बताया, इस चैप्टर में जो बताया, शिक्षा किस लिए और कैसे प्राप्त होगी, तो उन्होंने कहा धर्म के पथ पर चलने से, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। पहले मंत्र में ही कहा शास्त्र विहित कर्म नहीं करना चाहिए। तो ये वो मेथड्स हैं कि दिस इज़ हाउ वी शुड गो विद। धर्म किसे कहते हैं, धर्म के पथ पर चलने की बात आएगी तो धर्म किसे कहते हैं, उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। बिना उस स्पष्टता के तो बात बनेगी नहीं। तो हर उम्र में हमारा कुछ धर्म होता है, हमारा एक स्वभाव होता है, हमारा एक स्वधर्म होता है। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे मन स्थिति क्या है और उसके अनुरूप मैं क्या कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। धर्म जो है, एक विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना, एक शिक्षक का धर्म है अध्यापन कराना। तो ये धर्म का मतलब है हमारा जो मूल कर्तव्य है, हमारा जो मकसद, हमारा वो ध्येय, हमारा होने का एसेंस। अगर कोई हमसे पूछे व्हाई डू यू एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, आप इस पृथ्वी पर हो ही क्यों, और अगर आप इस पृथ्वी पर हो तो उसकी वजह क्या है, तो कोई इंसान कह सकता है मैं चाहता हूं कि मैं आनंद से जीऊं और दूसरों के साथ इस आनंद को बांटूं। जो परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा की है उस सब पर वो कृपा करे। तो इस व्यक्ति का धर्म क्या हुआ, आनंद को बांटना, आनंद से जीना। सो हाउ टू लिव आ लाइफ, तो वो कहते हैं कि जब हम धर्म के पथ पर चलते हैं, जब हम अपने स्वभाव, अपने विचार, अपने कर्म के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, कब कौन सा समय है, किस क्या अवस्था है, मुझे कैसे करना है, तो वो कहते हैं वो धर्म के पथ पे चलेंगे तो शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, दसवें अनुवाक में क्या कहा शिक्षा के लिए कैसे। तो पहले बताया शिक्षा क्या पढ़ना चाहिए, फिर बताया क्यों पढ़ना चाहिए, अब बता रहे हैं कैसे पढ़ना चाहिए दसवें अनुवाक में। तो दसवें अनुवाक में क्या कहा कि सबसे पहली बात तो ये समझो, जब आप कैसे पढ़ने की बात है तो समझो कि तुम अमृत स्वरूप हो, तुम प्रकाश युक्त हो, तुम श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त हो, ये सबसे पहले समझो। अगर ये बात समझ में नहीं आती कि तुम श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त हो और प्रकाश का तुम एक पुंज हो और अमृत स्वरूप हो, तो यहां पर इस समझ के साथ पढ़ाई शुरू करो, इस समझ के साथ जो है सीखना शुरू करो। इसी को आगे अगले अध्याय में थोड़ा सा बताया, अलग तरीके से थोड़ा बताया। तो कहा कि धर्माचरण करो, स्वाध्याय करो और सत्य के पथ पर चलो। कैसे पढ़ाई करें, तो कहा तीन चीज़ें, ग्यारहवें अनुवाक में बहुत स्पष्ट तरीके से कहा तीन चीज़ें। क्या तीन चीज़ें, सबसे पहली बात धर्माचरण करो, ठीक है, जो आपका धर्म है उसके अनुरूप कार्य करो, स्वाध्याय लगातार स्वयं का अध्ययन और लगातार स्वयं के द्वारा अध्ययन स्वाध्याय, सत्य बोलो। ये बड़ा आज के युग में लोग मुझे कहते हैं कई बार, अरे नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, मुश्किल तो पता नहीं लेकिन इसको बोलने का मजा बहुत है। अंदर से जो फील होता है, ओ गॉड, आपके पास कुछ नहीं है, अंदर कुछ छुपाने को नहीं, कुछ दबाने को नहीं, कोई चीज नहीं है जो भीतर से काटती है, तंग करती है। यू आर सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, तो आनंद बहुत है। एंड देन सत्य का जो साधना है, दैट कनेक्ट्स यू विद द कॉस्मोस, विद द एग्जिस्टेंस। तो आपके भीतर ना एक मीठा मीठा सा एक रस जो है वो बहता रहता है। यू फील सो लाइट, यू फील सो हैप्पी। तो सत्य के पथ पर आगे बढ़ो। द मोमेंट वी क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस, अरे इसका उसका ये वो, विद्यार्थी बहुत करते हैं ये सब। जैसे जैसे वो करते हैं तो एक माया जाल क्रिएट होता है, एक मेंटल फॉग क्रिएट होता है, मानसिक जो है उलझने पैदा होती हैं, और वो आपको दूर हटा देती हैं पढ़ाई से, सीखने से, सिखाने से। और धर्माचरण की बात की और स्वाध्याय की बात की, इन तीन चीज़ों के माध्यम से जो है वो हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा और भी कहा, ऐसे कहने को चौथी जो बात कही उसमें कहा कि प्रमाद से बचें, क्योंकि प्रमाद जो है वो हमको भटका सकता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो अध्ययन से, सीखने से हमको रोक सकती हैं? तो उनमें सबसे पहले प्रमाद को कहा कि प्रमाद जो है, आलस जिसे कहेंगे, टाल मटोल करना जिसे कहेंगे, वो दिक्कत कर सकता है। और फिर अगले मंत्र में आपने आपने सबने सुना होगा, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, ये तो सुना ही होगा सब लोगों ने। तो ये इसी तैतरीय उपनिषद में ही है। तैतरीय उपनिषद का जो पहला शिक्षावल्ली जो खंड है, उसके 11वें अनुवाक में, 11वें अध्याय समझ लीजिए, उसमें इसका जिक्र आता है। उसके 11वें अध्याय के दूसरे मंत्र में इसका जिक्र आता है। तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अब ऐसा सोचने से शिक्षा कैसे प्राप्त होगी? तो कहते हैं जब भाव मन में होता है कि मेरी माँ जो है वो देव तुल्य हैं, देवता के जैसी हैं, तो उनके साथ जो एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है। और वो जो बॉन्डिंग है, माँ ने जो जीवन में सीखा होगा, अपनी तकलीफ में, अपने दर्द में, अपने संघर्ष में, वो सारा बच्चों को सहज ही प्राप्त हो जाता है। पितृ देवो भव, अगर पिता को हम देवता की नज़र से देख सकें, ओ गॉड, तो बहुत सारी चीज़ें अलग लेवल पे हो जाती हैं। पर ऐसा मुश्किल है भाई, कैसे देखें? हम तो जज करते रहते हैं पेरेंट्स को, हम तो जज करते रहते हैं फ्रेंड्स को, हम तो जज करते रहते हैं हर रिलेशन को, तो मुश्किल है। पर यहाँ कहा कि एक विद्यार्थी के लिए, चाहे अगर आप बड़े भी हैं उम्र में और एक विद्यार्थी होना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और सीख के अपने जीवन को थोड़ा और सुंदर बनाना चाहते हैं, तो कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, कि आचार्य जो हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, जिस भी रूप में सिखा रहे हैं, जितना भी, देवता के समान हैं। तो ये भाव भीतर पैदा करना है। ये भाव जैसे जैसे भीतर प्रबल होता चला जाता है, उन्होंने कहा चीज़ें अपने आप अलाइन करती चली जाती हैं, ठीक होती चली जाती हैं। और अतिथि देवो भव भी कहा, जब भी कोई आए, जब भी किन्हीं से मिलें, यू शुड हैव इंटरेक्शंस, डीप इंटरेक्शंस, आस्क क्वेश्चंस। तो हमारे आसपास के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके जीवन को देखना, उनको समझना, उनका अनुसरण करना। हाँ, तो लगातार ये कौन सी प्रक्रिया है? ये सीखने की प्रक्रिया है। और फिर थोड़ा आगे कहा कि सीखने की प्रक्रिया में और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगला जो तीसरा मंत्र में है, उसमें कहा क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो जो हमारे कर्म हैं वो दोषपूर्ण कर्म नहीं होने चाहिए। इसका क्या तात्पर्य है? दोषपूर्ण कर्म वो कर्म होते हैं जिन कर्मों की वजह से हमको बुरा महसूस होता है, गिल्ट होता है, अंदर तकलीफ होती है, परेशानी होती है। ऐसे कर्मों से हमें बचना चाहिए, नहीं तो ये कर्म क्या करेंगे, मन की शांति को डिस्टर्ब कर देंगे। तो फिर वो जो अध्ययन की जो बात है, जो सीखने की बात है, वो ठीक से हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़े, कैसे सीखें? तो उन्होंने कहा कि श्रद्धा पूर्वक, और जो ज्ञान है उसके दान के द्वारा सीखे। बता कितनी कमाल की बातें लिखी है ना इतने साल पहले। लेकिन जब आप ऐसा दान करते हैं, ज्ञान का दान करते हैं या जो आपके पास है उसका दान करते हैं, तो कहा कि मन में दानीपन का अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि दान लेने वाले स्वयं भगवान ही हैं। ओ गॉड, कितना प्यारा कहा। अब अगर एक टीचर ये सोच के क्लास में जाए कि मैं जो ये विद्या ध्यान कर रहा हूँ, ये मेरे सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, ये भगवान साक्षात मेरी क्लास में बैठे हैं, ये भाव से भरकर अगर कोई टीचर क्लास लेगा, क्या क्लास होने वाली है, क्या सेशन होने वाला है। तो दिस इज हाउ यू शुड स्टडी। ये सारे मेथड्स, ये सारे प्रोसेसेस हैं। और फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें विवेक पूर्वक, निष्काम भाव से, कर्तव्य समझ करके विद्या को ग्रहण करो। तो जीवन का जो दर्शन था बहुत ही हॉलिस्टिक दर्शन था। लेकिन एक बात और भी है, जैसे प्रेम जी ने कहा कि कोई अतिथि राक्षसी हो तो उसको देव के जैसे कैसे देखें। हाँ, सही बात है, चुनौतीपूर्ण तो है, आसान तो नहीं है इसका पालन करना। तो इसको पहले ये समझना पड़ेगा प्रेम जी, राक्षस है कौन ये देखना पड़ेगा, और वो राक्षस हमारे पास आया क्यों अतिथि बनकर, ये भी देखना पड़ेगा। और अगर राक्षस एक अतिथि के रूप में हमारे पास आया है, किस उद्देश्य से आया है, क्या वो राक्षस आपसे कुछ सीखना चाहता है ताकि वो अपने उस राक्षसत्व का त्याग कर सके, या वो राक्षस आया है कि आपको कुछ तंग करने के लिए, चुनौती देने के लिए। तो अगर वो चुनौती देने के लिए आया है तो भी ठीक है, एक तरीके से आपके सामर्थ्य का थोड़ा परीक्षण ही हो जाएगा, तो आपके धैर्य का परीक्षण हो जाएगा। एक बार जब व्यक्ति चीज़ों को पॉजिटिव नज़र से देखने लगता है तो उसमें बहुत सी चीज़ें निकल जाती हैं, बहुत सी चीज़ें निकल जाती हैं। और हमको जब ये महसूस हो रहा है, हम इवन अगर किसी में राक्षस तत्व है तो उसकी भी तो मदद कर ही सकते हैं, ऐसा कोई इतनी बुरी बात भी नहीं, अगर वो मदद लेने के लिए आया है। और अगर वो चुनौती बनकर हमारे पास आया है तो भी हम अपने सामर्थ्य को इकट्ठा करें और उसकी चुनौती का डट के सामना करें। दोनों ही परिस्थिति में आप देखेंगे भला हमारा ही होने वाला है। हमको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंद्वी मिला, जिससे कि हम ये देख पाएँ कि हम जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उसके प्रति हमारा कमिटमेंट का लेवल क्या है, हमारा उसके प्रति डगमगा तो नहीं रहे हम आसानी से। तो देर आर अगेन डिफरेंट वेज कैसे हमको उसे देखना चाहिए। तो कहा कि ये सारी बातें हैं, और फिर अंत में जो 11वां अनुवाक है उसके 11वें अनुवाक के अंत में कहा कि शिक्षा क्या है, फिर प्यार से कह दिया अनुशासन ही शिक्षा है, अनुशासन ही शिक्षा है। अब इस अनुशासन ही शिक्षा है से क्या तात्पर्य है, अनुशासन शब्द को थोड़ा समझना पड़ेगा। अनुशासन शब्द से तात्पर्य है स्वयं के जीवन को निर्देशित करने का सामर्थ्य, कैपेसिटी टू डायरेक्ट योर ओन लाइफ, कि हम अपने जीवन को दिशा दे सकें, अपने जीवन पर हम शासन कर सकें, हमारा शरीर पर हमारा शासन हो, हमारे मन पर हमारा शासन हो, हमारी ऊर्जा पर हमारा शासन हो, हमारे ध्यान पर हमारा शासन हो, वो जो शासन है दैट इज अनुशासन। और विद्या का जो तात्पर्य था, विद्या ग्रहण का जो मकसद था, वो यही रहा हमेशा से, कि हम स्वयं को निर्देशित कर सकें, स्वयं को दिशा दे सकें, स्वयं को सही मार्ग की ओर ले जा सकें। तो ये शिक्षावली को हमने सार रूप में समझा, जहाँ तीन प्रश्नों के उत्तर दिए गए, क्या सीखना है, कैसे सीखना है और क्यों हमें सीखना है। इन तीनों प्रश्नों को यहाँ सामने रखा है। शिक्षावली का जो पहला खंड था उसको सार रूप में समझा। अब दूसरा भाग तैतृयोपनिषद का, उसका नाम है ब्रह्मानंदवल्ली। उसमें हमने क्या सीखना चाहिए, तो जीवन को जीने का पूरा जो रहस्य वो इसमें रखा। पहले खंड में कहा सीखो, एक छोटा सा शब्द बोल देता हूं, सीखो। और दूसरे खंड में कहा जियो, लर्न एंड लिव। इफ यू वॉन्ट टू मेक इट लिटिल बेटर, लर्न में क्या कहा, हाउ टू लर्न, व्हाट टू लर्न, व्हाई टू लर्न। और अब इसमें कहा दूसरे भाग में ब्रह्मानंद वल्ली में कि अब आप क्या करें, जिएं, कैसे जिएं, जीने का क्या तरीका है। ये ठीक है। तो कहा कि जब आप सीखने की दिशा में गए थे, जब ब्रह्म ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, तो पहले मंत्र में कहा ब्रह्म ज्ञानी के जैसे जिए। ओ बाबा रे, जीने का ढंग कैसा होना चाहिए, एक ब्रह्म ज्ञानी कैसे जीता है, वैसे हमें जीना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी किसे कहेंगे, जिसने ये जान लिया कि सारा संसार वही ब्रह्म है, उस रूप में जिसने जीवन को देख लिया, दैट इज ब्रह्म ज्ञानी। तो एक ब्रह्म ज्ञानी के तरह से जिए। तो पहले जो बात की वो ब्रह्म विद्या की बात की, अब किसकी बात चल रही है, ब्रह्म ज्ञानी की बात चल रही है। ब्रह्म ज्ञान भी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी, समबड़ी जिसने आत्मसात कर लिया, ब्रह्म ज्ञान को पी लिया जिसने, उस तरीके से जीवन को जिए, उस भाव से जीवन को जिए। और कैसे जिए जीवन को, कि ब्रह्म ही सत्य है, ये जो चेतना हमारे भीतर है वही सत्य है। शरीर मिटता है, बदलता है, छूटता है, तो शरीर हम देख रहे हैं, जैसा भोजन हम कर रहे हैं उससे निर्मित हो रहा है। इस शरीर को चलाने वाला मन जो है वो भी बदल रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है कंटिन्यूसली। तो क्या करें, जीवन जीने के लिए उन्होंने कहा सबसे पहले ब्रह्म ही सत्य है, इस बात को समझ लें कि मैं चेतना स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, इस बात के साथ जीवन को जिए। दूसरा, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप होने से मतलब क्या है, जो मैं जानता हूँ, मैं जो समझता हूँ, और जानने और समझने के लिए मेरे भीतर जो प्रज्ञा है वो मेरा सच्चा स्वरूप है, आई एम द कॉन्शियसनेस। ये भाव के साथ मैं जी पाऊँ। और क्या कहा, कैसे जिए, अनंत हूँ, आई एम इनफाइनिट। अनंत कैसे हो सकते हैं। गुरुजी बहुत बार कहते थे कि आप काल के परे हो। काल के परे कैसे हो सकते हैं, हाउ वन कैन बी बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड स्पेस। तो इस बात को कैसे जियो, तो वो कहते हैं कि आप अनंत हैं। अभी आप अपने शरीर को स्पर्श कीजिए, जब आप अपने शरीर को स्पर्श करते हैं तो जो आपकी अनुभूति है, जो जो जिन पदार्थों से ये शरीर बना है, ये पदार्थ चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हर तरह के, चाहे वो सल्फर है, कैल्शियम है, सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन है, इन सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही चीज़ से बने और वह हैं सबएटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये जिसे हम स्पर्श कर रहे हैं, ये सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहाँ बने, आज से करीब करीब 1380 करोड़ साल पहले, 1350 करोड़ साल पहले, आज से छोटे 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 ये जो कण हैं वो सृजित हुए। अब सोचो 1350 करोड़ साल पहले जो मटेरियल अस्तित्व में आया था, उस मटेरियल से हमारा शरीर बना है। आप बताइए कितनी कमाल की बात है। और ये बना कहाँ होगा, किसी नेबुला में, किसी स्टार में। तो कई बार कहते हैं ना साइंटिस्ट लोग कि सितारों की धूल से हमारा ये शरीर बना है। सच बात लगती है, वैज्ञानिक रूप से तो सच है ही। तो तो कहते हैं तुम अनंत होकर के जीवन को जियो, ज्ञान स्वरूप होकर के जीवन को जियो, और तुम ब्रह्म रूप हो इस भाव के साथ जीवन को जियो। तो आज के इस सत्र में इतना ही। ब्रह्मानंद वल्ली में जीवन को कैसे जीना चाहिए इस पर हम आगे के सत्र में बात करेंगे। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति।